Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari, Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari, Jaya Yashoda Nandana Braja Jani Ranjana Yashoda, Jaya Yashoda Nandana Braja Jani Ranjana Yashoda Braja Jani Ranjana, Yamuna Tera Vanachari, Yamuna Tera Vanachari, Yamuna Tera Vanachari, Yamuna Tera Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe, Jaya Giridhari Radha Giridhari Radhe, Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Yeah. जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय सच्चिदानन्द जय सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द जय सच्चिदानन्द जय सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द जय सच्चिदानन्द जय सच्चिदानन्द गौर हरे जय सच्चिदानन्द गौर हरे Nithai, 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 Gauranga, Nithai, 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 Gauranga, Gaurahari, Nithai, Gauranga, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Nithai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nithai Gaur.
Hari Nam Sankirtan Ki, Hare Krishna Mahamantra Ki, जय ओम विश्वपाद परम हंस परिकाचार्य श्रेष्ठ उत्तर सत्य डिवाइन क्रेज अभय चरणारविंद भक्त दान स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्त दान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विश्वपाद परम हंस परिकाचार्य श्रेष्ठ उत्तर सत्य डिवाइन क्रेज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी महाराज की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की गौर भक्त वृंद की ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवती नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद नौ अध्याय चार और श्लोक श्रृंखला 68 इस अध्याय का शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपराध बहुत ही सुंदर प्रसंग है भक्तों के लिए, भक्ति से लबालब भरा हुआ है, आनंद प्रदान करने वाला है। और आज का यह श्लोक बहुत ही सुप्रसिद्ध और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आइए इस श्लोक के शब्दों से परिचित होते हुए श्लोक का आगे उच्चारण भी करेंगे, तत्पश्चात शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रवण करेंगे। साधव हृदयाम महियाम साधुनाम हृदयाम तु अहम मतन्यात ते ना जानन्ति न अहम् तेभ्य मानक्ति। साधवो हृदयं मह्यं, साधवो हृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं तवहम्, साधूनां हृदयं तवम् मदन्याते न जानन्ति, मदन्याते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनगपि, नाहं तेभ्यो मनगपि। साधव हृदयं मह्यं, साधव हृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं तहम्। मदन्याते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनगपि। साधव हृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं तहम्। मदन्यते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। साधव हृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं तहम्। मदन्यते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। साधव हृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं तहम्। मदन्यते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। साधव हृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं तहम्। मदन्यते न जानन्ति, माताजी। साधव हृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं तहम्। मदन्यते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। साधव हृदयं मह्यं, साधव हृदयं तवम्। न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। Sadava Hidayam Mayam Sadava Hidayam Mayam Madhyanate na jananti Naham tebyo managapi Sadava Shuddh Bhaktagan Hidayam हृदय में महियाम मेरे साधुनाम शुद्ध भक्तों के हृदयम हृदयों में तू निसंदेह अहम मैं हूँ मत अन्य मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ ते वे ना नहीं जानन्ति जानते हैं ना नहीं अहम मैं तेभ्यो उनकी अपेक्षा मनक अपि एक अंश भी अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी Srila Prabhupada Ji Dwara. Savior of the whole world, the most merciful, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Shuddh Bhakt Sadev Mere Hirdaye Mein Rehta Hai Aur Main Shuddh Bhakton Ke Hirdaye Mein Sadev Rehta Hoon. Mere Bhakt Mere Sivaye Aur Kisi Ko Nahi Jante Hain Aur Main Unke Atirikt और कुछ नहीं जानता तात्पर्य क्योंकि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को प्रदादित करना चाहते थे जिसका अर्थ है जिसका अर्थ हुआ कि वे भगवान के दिल को दुखाना चाहते थे क्योंकि भगवान का वचन है साधो हृदयम महियम शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है भगवान की भावनाएं उस पिता के समान होती है जो अपने बच्चे को पीड़ा में देखकर पीड़ा का अनुभव करता है अतएव भक्त के चरण कमलों पर की गई अपराध गंभीर होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने जोरदार शब्दों में कहा है कि किसी को भक्त के चरण कमलों पर अपराध नहीं करना चाहिए ऐसे अपराधों की तुलना उस मतवाले हाथी से की जाती है जा सकती है जो बगीचे में घुसकर उत्पात मचा देता है अतएव शुद्ध भक्त के चरण कमलों पर अपराध न करने के लिए अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए वस्तुतः महाराज अम्बरीश का तनिक भी दोष न था दुर्वासा मुनि उन्हें व्यर्थ ही प्रताड़ित करना चाहते थे महाराज अम्बरीश ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति का अंग स्वरूप एकादशी पारण पूरा करना चाहा अतएव उन्होंने थोड़ा सा जल पी लिया यद्यपि दुर्वासा मुनि महान योगी ब्राह्मण थे किंतु वे यह नहीं जानते थे कि यह सब क्या है एक शुद्ध भक्त तथा वैदिक ज्ञान के तथा कथित पंडित में यही अंतर होता है भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान के सारे आदेश प्राप्त करते हैं जैसा कि भगवत गीता में दसम अध्याय के 11वें श्लोक में स्वयं भगवान पुष्टि करते हैं तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञान जामतमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भाष्वता मैं उनके हृदय में वास करता हूँ उन पर दया करने के कारण अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूं। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी अनुमति भगवान नहीं देते। जैसा कि कहा गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। यहां तक कि अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव या शुद्ध भक्त की गतिविधियों की नहीं जान पाता, गतिविधियों को नहीं जान पाता। अतएव किसी को शुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वैष्णव अपने कार्य को सही ढंग से जानता है और वह जो कुछ करता है वह सही होता है, क्योंकि वह सदैव भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। अनुवाद। एक बार आप मेरे साथ एक साथ दोहराइए, मेरे बाद एक साथ दोहराइए। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवाय और किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोअभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं, वे हम सबके ऊपर परम अनुकंपा कर रहे हैं, जिनके अनुकंपा प्राप्त करते हुए हम उनके चरण कमलों पर सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी ललिता विशाखा उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नगमस्तक होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जो कि अपने विशाल कमल नेत्रों से कृपा का दृष्टि बरसा रहे हैं, जिनके कृपा दृष्टि से जैसे तैसे भी हैं हम भक्ति में लगे हैं, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी उनके परिकर सहित के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने गोलोक के प्रेम दन हरि नाम संकीर्तन इस धरातल पर पात्र अपात्र ना देखते हुए सबको दिए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके परिकर सहित के पाद कमलों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस भक्ति रूपी गंगा का प्रवाह पुनः इस धरातल पर जागृत कराया है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महा अनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए एवं अन्य भक्त जो टीटी किचन में श्रवण कर रहे हैं और जो भक्तगण इस्कॉन डिजायट्री के रिकॉर्डिंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उनके चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज के सत्र के ओर हम अग्रसर होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग हम भक्तों के लिए है। इस प्रसंग के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि भगवान के हृदय में क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से हम जान सकते हैं कि भगवान के भक्त कितने महान हैं, भगवान का भक्ति कितना महान है और भगवान कितने महान है। साधो हृदयम महियम, यह सुंदर बात जो है भगवान श्री कृष्ण वह दुर्वासा मुनि से कह रहे हैं। दुर्वासा मुनि वे भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। हमें थोड़ा सा जानकारी दुर्वासा मुनि के बारे में भी लेना चाहिए ताकि हमें जान पाए कि अगर दुर्वासा मुनि महान है तो अम्बरीश महाराज जो है भगवान के नजरों में कितने महान है वो जान पाएंगे। श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। दुर्वासा मुनि भगवान श्री कृष्ण के गुरु तुल्य है। दुर्वासा मुनि जब द्वारिका आते हैं तो वहां पे हमें ऐसा कथा श्रवण करने को मिलता है कि एक बार दुर्वासा मुनि आए कृष्ण रुक्मणी के साथ उनका आगमन के लिए प्रस्तुत हुए, बहुत ही सुंदर रूप से उनका आदर सत्कार किए, पाद प्रक्षालन इत्यादि किए, तत्पश्चात पूछे मीठे शब्दों से कि आप क्या चाहते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा मैं यह चाहता हूं कि मैं पूरे द्वारिका का भ्रमण करना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण रथ को तुरंत आदेश दिया तो रथ आ गए सेवा में, कहा कि ऐसा रथ मुझे नहीं चाहिए, इस रथ में हमें घोड़ा नहीं चाहिए, इस रथ को चलाने वाला घोड़े नहीं, हमें आप चाहिए कृष्ण। तो कृष्ण का आपके सेवा में मैं हाजिर हूं। फिर कहा कि आपके धर्म पत्नी रुक्मणी देवी भी चाहिए, तो कहा ठीक है। तो रुक्मणी और कृष्ण दुर्वासा मुनि के इस आज्ञा का पालन करते हुए रथ को ले ही जा रहे थे तो दुर्वासा मुनि धूप में कड़ी धूप में लेके जा रहे थे तो रुक्मणी देवी को प्यास लगने लगी, पसीना छूटने लगी, कमजोर होने लगी, कहा कि मुझे पानी चाहिए। और कृष्ण इशारा कर रहे थे नहीं नहीं दुर्वासा है पीछे, महान योगी है, बड़ा ब्राह्मण है, तेजस्वी है, अभी नहीं, उनका आज्ञा नहीं है। पर रुक्मणी से एक पल रहा नहीं गया तो रुक्मणी बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, तब कृष्ण ने सेवा को ना तोड़ने के कारण कहा कि थोड़ा सा पानी जल पिला देता हूं, उन्हें पता भी नहीं लगेगा।
तो उन्होंने अपने पांव के दाहिने पांव के अंगूठे से पृथ्वी पर हल्का सा जोर लगाए तो पिचकारी के बांधी एक पानी आने लगे और रुक्मणी माता के मुख पर चले गई और रुक्मणी माता प्यास को बुझाकर फिर से रथ लेने चली। तब दुर्वासा मुनि क्रोधित हुए, मेरे आज्ञा के बगैर आप कैसे पानी पिए, और उन्हें श्रापित कर दिया, कहा कि 12 वर्ष के लिए आप पति पत्नी अलग रहोगे। और इसलिए आज भी हम देखेंगे रुक्मणी माता का एक अलग मंदिर और भगवान कृष्ण के अलग महल प्राप्त होता है। इतना आदर देते थे दुर्वासा मुनि को भगवान श्री कृष्ण। वो दुर्वासा मुनि इतना महान है भगवान श्री कृष्ण के नजरों में, पर वही दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज का अपराध किया और चक्र जब चलने लगा तो दुर्वासा मुनि कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो समझो कि भगवान के भक्त कितने कितने महान हो सकते हैं। इतना ही नहीं दुर्वासा मुनि, इतना ही नहीं वृंदावन के लीला में भी हम देखेंगे दुर्वासा मुनि एक बार आए और उन्हें भूख लगा था तो श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ खेल रही थी तो तुरंत उन्होंने मिट्टी का लड्डू और चपाती इत्यादि बनाए और खिलाए और उसे खाकर वो इतने प्रसन्न हुए कि श्रीमती राधा रानी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो भी आपके हाथ के पकवान पाएंगे वह सदा अमर रहेगा। तो तुरंत यशोदा मैया ने राधा रानी को कहा कि आप मेरे लाला के लिए, मेरे बेटे के लिए रोज पकवान बनाए ताकि वह अमर रहे। तो ये वृंदावन के लीला में भी बहुत महत्वपूर्ण उनका एक भाग है। दुर्वासा मुनि ऐसे महान योगी तपस्वी है जो सारे ब्रह्मांड के सारे लोग उन्हें आदर देते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो सुदर्शन चक्र से काट के फेंक भी दिया होता, शिशुपाल को तो रुका भी नहीं, ऐसे काट के उसके ऐसे तेज गति से सुदर्शन चक्र चलने लगी। कहते हैं कि उस राज्यसभा में सुदर्शन चक्र इतना तेज गति से चलने लगी कि शिशुपाल का गर्दन शरीर से अलग हो गया और एक बूंद भी रक्त उस राज्यसभा में यज्ञ में गिरा नहीं और सभा अपवित्र या अशुद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र भगवान का सेवा करते वापस आ गए। पर यहां पे हम देख सकते हैं कि दुर्वासा मुनि के लिए, यह दुर्वासा मुनि शिव जी के अंश माने जाते हैं। ऐसे अनेक कथा ऐसे कथा है कि अत्रि ऋषि और अनुसया के भी पुत्र माने जाते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र सोम माने जाते हैं और विष्णु के पुत्र दत्तात्रेय माने जाते हैं और शिव जी के पुत्र यह दुर्वासा माने जाते हैं। सुधांशु प्रभु ने कुछ सत्र पहले इस कथा को बताया था। तो इसी में यह है कि वे बच्चे बनकर आते हैं, शिव, ब्रह्मा और महेश, तो उनके ही अंश बाद में दत्तात्रेय और सोम और दुर्वासा बनकर आए। तो इस प्रकार से वे बहुत महान है, उनके जन्म भी महान है, उनके कर्म भी महान है, पर अम्बरीश महाराज का जन्म दिव्य है और उनके कर्म भी दिव्य है, वे भगवान के महान भक्त हुए। अब अम्बरीश महान महाराज जो है वो महान है, वो एक महान इस कुल में जो कि सूर्य वंश के इस कुल में आते हैं, महाराज नाभागा के वो सुपुत्र बने, वो बड़े भक्त बने और महान वैष्णव भी बने। अम्बरीश महाराज का परीक्षा लेने दुर्वासा मुनि क्यों आए, इसके पीछे एक कथा इस प्रकार से है कि अम्बरीश महाराज के एक छोटे भाई हुए, वो नास्तिक हुए। जिस प्रकार से बड़े भाई हमेशा छोटे भाई का भला चाहते हैं, तो अम्बरीश महाराज चाहते थे कि उनके भाई भी भक्त बन जाए, जीवन में प्रगति करे और सदगति को प्राप्त करें। पर छोटा भाई बहुत दुष्ट प्रकार का निकला। जैसे एक बार दुर्योधन पांडवों का परीक्षा लेते हुए क्या कहा, ये देखो ये वन में ये पांच पांडव द्रौपदी के साथ इधर उधर भटक रहे हैं और कहते हैं कि भक्त महान है, वैष्णव महान है, और वो योगियों को तपस्वियों का निंदा कर रहे हैं, ऐसे दुर्वासा मुनि से कहा। तो दुर्वासा मुनि को इतना ही कहा। वैसे दुर्योधन ने बहुत सुंदर रूप से उनका उन सब का दुर्वासा मुनि का बहुत सेवा किया, और दुर्वासा मुनि ने जब पूछा कि क्या चाहते हो, तो कहा कि ये पांच पांडव अपने को वैष्णव कहते हैं, कहते हैं कि वैष्णव सबसे महान है और तपस्वियों को तुच्छ मानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने दुर्वासा मुनि के हृदय में पांडव के प्रति क्रोध उत्पन्न कराया और कहा कि अब मैं उनको मजाक चकाता हूं करके कौन गए, दुर्वासा मुनि, और कहा कि मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मुझे आहार चाहिए, भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए। और द्रौपदी कांपने लग गई, बोले कि अब कुछ नहीं है। इसी प्रकार से अम्बरीश महाराज का छोटा भाई का वर्णन आता है, वह दुर्वासा मुनि को भड़काए। नहीं तो दुर्वासा मुनि कभी कोई भक्त का इस प्रकार से बुरा नहीं चाहते हैं। अम्बरीश महाराज इतना प्रयास किए अपने भाई को भक्त बनाने के लिए। जब भी नारद मुनि उनके सभा में आता तो कहते थे कि आइए महाराज, आज कुछ सेवा स्वीकार कीजिए, और सेवा के बाद कहते थे कि मेरे महल के नजदीक मेरे छोटे भाई का महल है, आप जरूर उसका दर्शन दीजिए, उसे भक्त बनाइए। तो नारद मुनि हमेशा जाते थे, पर यह नास्तिक का नास्तिक रहा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में नारद मुनि जब भी आते, अम्बरीश महाराज कहते कि आप जाइए, तो उसके छोटे भाई इतने गुस्से में आते थे, नारद मुनि को देख के तलवार से मारने का उन्होंने धमकी दिया, अगले बार आओगे तो मैं सर काट दूंगा आपका। अम्बरीश महाराज फिर भी कहते थे नारद मुनि से, आप कृपा करके मेरे भाई का दर्शन की उनको दर्शन दीजिए। पर नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं वो बहुत अपराध करता है, ठीक नहीं है। तो एक कथा इस प्रकार से, तो नारद मुनि से कहा कि आखिरी बार आप जाइए, तब कहा कि मैं आखिरी बार जाऊंगा, अगले बार मैं आपके छोटे भाई के महल नहीं जाऊंगा। तब नारद मुनि वहां पे गए उसके छोटे के भाई के पास, बोला वापस आ गए तुम, तो बोला क्या चाहते हो? तो नारद मुनि ने कहा मैं केवल एक पल आपका चाहता हूं। तो बोला एक पल में क्या करोगे? मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तो छोटा भाई ने कहा ठीक है, जल्दी पूछो और जल्दी यहां से रफा दफा हो जाओ। तब पूछे नारद मुनि ने, एक शुद्ध भक्त का संग करने का क्या लाभ होता है, यह उनका प्रश्न है, तो बोलो उत्तर क्या है। तो उसका छोटा भाई बोला अभी मैं उत्तर देता हूं, और तलवार निकाला। नारद मुनि वहां से गायब हो गए। इतना पाप किया था यह उसका छोटा भाई कि अंत में यमदूत आए, उसे लेकर गए यमपुरी में। यमराज जी ने पूछा कुछ पूछना है आपको, अब सजा दिया जाएगा। तो वो सर कुचला रहा था, क्या पूछूं अब तो मार पड़ेगी। तब अचानक शुद्ध भक्त का वाणी उन्हें याद आ गया, मेरे हृदय में एक प्रश्न है, शुद्ध भक्त का संग करने का, एक पल का संग करने का क्या लाभ है। तब यमराज सर कुचलाने लगे, अरे एक पल, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूं, शिवजी के पास जाता हूं। तो शिवजी के पास गए तो शिवजी से पूछे, बोलो क्या बात है? तो कहा कि एक पल शुद्ध भक्त का संग करने से क्या लाभ होता है। तो शिवजी ने कहा हरी बोल, वो भी सर कुचलाने लगे, मुझे भी पता नहीं। तो गए ब्रह्मा जी के पास, चलो हम अपने पिता के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, दंडवत नाम के, कहा कि कैसे आना हुआ, शुद्ध भक्त का एक पल संग करने से क्या लाभ है। चारों वेद को पूछा चारों सर से, तो चारों ने सारे पन्ने टर्र करके पलटे, बोला पता नहीं, जल्दी से जवाब नहीं मिल रहा है। तो बोला कि चलो हम अपने भगवान के पास जाते, विष्णु लोक पर गए, दंडवत प्रणाम किए, शिव ब्रह्मा और महेश को और यमराज को देखकर, और इनके साथ अम्बरीश महाराज जी के छोटे भाई को देखकर पूछे, कहो कैसे आना हुआ। तो कहा कि प्रश्न है पूछो। तो कहा शुद्ध भक्त का पल भर का संग करने का क्या लाभ है। क्या लाभ है? लाभ यह है कि आप सब अपने अपने धाम जाइए और इसको ये अम्बरीश महाराज के छोटे भाई को यहीं रख दीजिए। यमराज ने कंप्लेन किया, नहीं हो सकता। शिव जी ने बोला, कदापि नहीं। ब्रह्मा जी बोला, ये कैसे हो सकता है? ये तो पापी है, दुष्ट है, ये तो क्या क्या नहीं गलत काम किया। अब जाइए, आपको पता लग जाएगा। तो पूछे, क्या पता लगेगा? शुद्ध भक्त का संग करने का लाभ यह है कि वो तुरंत शुद्ध होकर परम धाम वैष्णव बनकर भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अम्बरीश महाराज ऐसे भक्त हैं कि उनके नास्तिक भाई भी को भी भगवत धाम पहुंचा दिए। अब उन्हीं दिनों में अम्बरीश महाराज से रूठ कर उनके छोटे भाई ने दुर्वासा मुनि को एक दिन आगमन कराया और कहा कि ये मेरा बड़ा भाई अपने आप को वैष्णव कहता है और एक साल का कड़ा तपस्या किया है, एकादशी का व्रत किया है, अब कहेगा कि हमने इतना बड़ा व्रत किया और कहते कि वैष्णव के सामने, भक्तों के सामने ये जो तपस्वी है, ज्ञानी है, पंडित है, तुच्छ है, निकृष्ट है, नगण्य है। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, ये बात है। तो दुर्वासा मुनि गया, चलो मैं अब दिखाता हूं कौन बड़ा है, त्यागी बड़े हैं, योगी बड़े हैं या भक्त बड़े हैं, अब देख लो कौन बड़े हैं। और इस प्रकार से उसके छोटे भाई बहुत खुश हुए और दुर्वासा मुनि उसकी बातों में आ गए और उन्होंने परीक्षा लिया। आप जानते हैं किस प्रकार से जल, किस प्रकार से वो पारण का समय था और अतिथि वहां पे आए, अतिथि देवभव का कि ठीक है मैं अभी आता हूं, मैं थोड़ा पवित्र होकर स्नान इत्यादि करके मैं आता हूं, ऐसे कहा। और आते आते वो देख ही रहा था कि अम्बरीश महाराज पारण का समय में क्या कर रहा है। और जैसे ही देखा, अम्बरीश महाराज ने सारे भक्तों के, संतों के इस एडवाइस को सुनकर वो जल ग्रहण किए। जैसे जल ग्रहण किए वो तुरंत वहां पे प्रकट हो गए और कहा कि कैसे वैष्णव हो तुम, सदाचार नहीं जानते हो, बड़े गमंडी कहीं के, कहते हो कि अतिथि देव बहो, ये वैदिक शिष्टाचार नहीं जानते हो, ये होता है भक्त। इस प्रकार के वो निंदा करने का प्रयास किया और कहा कि अब इसी वक्त आपको मैं एक सबक सिखाता हूं। और उन्होंने अपने जटा से तृतीय नाम के एक भयंकर असुर राक्षस को प्रस्तुत प्रकट किया। अम्बरीश महाराज सोचने लगे, देखने लगे ये क्या हो रहा है, पर उसके हृदय में जैसे भीमा प्रभु बड़े सुंदर रूप में वर्णन किए कि उसके हृदय में यही बात थी, अगर आज कृष्ण यह चाहते हैं कि मेरा नाश हो तो हरे कृष्णा, आज भगवान मुझे बचाना चाहते हैं तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सवय मन कृष्ण पदा रविंद, उनका मन कृष्ण में ही था। बोला मैं क्यों क्यों और कुछ अभिलाषा करूं, अपनी रक्षा का भी क्यों मैं अभिलाषा करूं, मुझे तो हरे कृष्णा ही करना है। और स्वाभाविक, ऐसा नहीं कि वो कृत्रिम रूप से, नहीं नहीं मेरा अंत समय आ रहा है मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा, ऐसी भाव नहीं, स्वाभाविक वो सोच रहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान का, केवल भगवान का चरण कमलों का स्मरण करना है। और मन को, चित्त को उसी में स्थिर रखे थे। और उतने में भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान का सुदर्शन चक्र को एक आदेश है, जब भी कोई वैष्णव का अपराध करता है तो तुरंत उसको आप नाश कर दो या उसको कष्ट पहुंचाओ। तो ये सुदर्शन चक्र उनका पीछा करने लगा। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा कुछ नहीं। फिर वो गए ब्रह्मा जी के पास, नहीं नहीं आगे। फिर अब विष्णु के पास आ रहे हैं। तो देखिए, दुर्वासा मुनि जो कि श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से रोज कृष्ण राधा रानी के हाथ के पकवान प्राप्त कर रहे हैं, आज भी हम देखते हैं राजभोग, सुबह का भोग, बाल भोग, ये सब कृष्ण पा रहे हैं क्योंकि दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद से। इतना ही नहीं, द्वारका में उनके लिए रथ कृष्ण चला रहे थे, इतने महान है दुर्वासा मुनि, पर भक्त जो है भगवान के नजर में उनसे भी ज्यादा महान है। ये सुदर्शन चक्र उनके पीछा कर रहे थे, वो ताप का अनुभव कर रहे थे। यही ताप हर किसी को अनुभव होगा अगर वो वैष्णव के चरण कमलों पे थोड़ा सा भी अपराध करेगा, वैष्णव को दुख पहुंचाएगा। कमलोचन प्रभु बता रहे थे कि एक भक्त उनसे कह रहा था, देखो देखो आज तक मैंने वैष्णव अपराध नहीं किया। तो पूछे, प्रमाण क्या है? कि मेरे पीछे सुदर्शन चक्र नहीं है, मैं अभी तक अपराधी नहीं हूं, मैं वैष्णव अपराधी नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं कि सुदर्शन चक्र चलना चाहिए तब हम वैष्णव अपराधी है। देखो देखो वो वैष्णव अपराधी है, उसके पीछे सुदर्शन चक्र चल रहा है, और मैं वैष्णव अपराधी नहीं हूं क्योंकि मेरे पीछे सुदर्शन चक्र नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसे ही हम वैष्णव अपराध करने लग जाते हैं तो हमें प्रकृति के तीन ताप सताने लगेंगे। जिस प्रकार से दुर्वासा मुनि ताप का अनुभव कर रहा था, जलन का अनुभव कर रहा था, अग्नि का ये जलन का अनुभव कर रहा था, इसी प्रकार से हमारे हृदय में कष्ट का अनुभव होगा। हम भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, पर ये जलन कहां से आ रहा है? मैं भक्तों का सेवा कर रहा हूं, सारे भक्ति का अंग का मैं पालन कर रहा हूं, फिर भी मेरे हृदय में कष्ट क्यों आ रहा है? ये ताप का अनुभव क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो सुदर्शन चक्र नहीं, प्रकृति के तीन ताप हमें कष्ट पहुंचा रहा है, ये ताप दे रहा है। सुदर्शन चक्र ताप दे रहा है और ताप दुर्वासा मुनि को पीड़ित कर रहा है। इसी प्रकार से कोई वैष्णव अपराध करेगा उनको इस जगत का तीन ताप पीड़ित करेगा। तो हमें रुकना नहीं चाहिए कि देखो देखो आज मैं अभी तक वैष्णव अपराध नहीं हूं। नहीं, जिस वक्त हमें ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में कष्ट का अनुभव हो रहा है, समझ लेना चाहिए कि हमने वैष्णव अपराध किए, और तुरंत ढूंढ लेना चाहिए कल मैंने क्या किया, परसों मैंने क्या है, एक महीना पहले या तीन महीने पहले क्या किया, ढूंढ लेना चाहिए डायरी या अपने ही जीवन को थोड़ा परख के देखना, मैं इन कुछ वैष्णव के प्रति कुछ अपराध तो नहीं किया। जब मैं नया भक्त था तब हमारे साथ एक अच्छे वैष्णव महीधर प्रभु हुआ करते थे, तो बहुत ही महान वैष्णव अच्छे भक्त हैं। तो एक बार महीधर प्रभु मुझसे कहने लगा कि मैंने जरूर वैष्णव अपराध किया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत नया था। तब पूछा, वो क्यों? क्योंकि मेरे शरीर कष्ट दे रहा है मुझे बार बार मुझे लघु शंका इत्यादि करना पड़ रहा है, स्नान इत्यादि करना पड़ रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा था वो कैसे कि वैष्णव अपराध किया और आपका पेट गड़बड़ करने लग गया। वो मुझे समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वैष्णव अपराध करने से सुरन शरीर या मन में कष्ट होगा। फिर बाद में वो खुद मेरे सामने सोच रहे थे, मैं इस भक्त से उस भक्त से, फिर बाद में बोला हो सकता है मैं उस भक्त से थोड़ा कठोरता से वार्तालाप किया, मैं कल जाके जरूर दंडवत प्रणाम करूंगा। और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, फिर बाद में दोपहर को कहा अब मेरा शरीर ठीक है। तो मैं फिर से समझाने, ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? फिर बाद में जब और इन भागवत कक्षा में आने लगा तब पता लगा कि वो मुझे अपने आचरण के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे कि कैसे वैष्णव का अपराध करने से ताप का अनुभव होता है, शरीर या मन दुखने लग जाता है। तो यह है वैष्णव अपराध। हम सुदर्शन चक्र के लिए ना रुकें, वो ताप हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वैष्णव को कष्ट मिला है। तो यह सुदर्शन चक्र खड़ा है और ताप दे रहा है, और एक साल तक दुर्वासा मुनि कहां कहां नहीं गए, जहां भी गया वो ताप जो है उसको सता रहे थे, और वो कह रहा है बचाओ बचाओ, पर वो सुदर्शन चक्र काट नहीं रहा है क्योंकि वो शिशुपाल जैसे बहुत बड़े पापी नहीं था, बड़े दुष्ट व्यक्ति नहीं था, वो उसे सुधारने के लिए ताप दे रहा था सुदर्शन चक्र। इस प्रकार से ताप प्राप्त करते करते वह भगवान कृष्ण के धाम में आ गए, वो कहीं पे भी गए। इसी प्रकार से हम भी देखे हमारे जीवन में, अगर हम कहीं पे भी हमारे जीवन में हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो हमें लगेगा हमारे हृदय या शरीर में कष्ट हो रहा है। हम कहीं पे भी जाएं, यहां से अमेरिका जाएं या अमेरिका से कश्मीर जाएं या कश्मीर से पानी के अंदर भी जाएं, वो ताप जो है हमें छोड़ेगा नहीं। दुर्वासा मुनि को वो ताप छोड़ नहीं रहा था। इसी प्रकार से तो वो कृष्ण के पास जब गए तो कृष्ण से वो कहे, आपके नियंत्रण में सब कुछ है, ये सुदर्शन चक्र को आप अपने नियंत्रण में कर लो, आप अपने आधीन में कर लो। तो वो कहे, भगवान कृष्ण तुरंत कहे कि ये सुदर्शन चक्र मेरे आधीन में नहीं है। तो बोले, वो किसके आधीन में है? तो सुदर्शन भगवान कृष्ण कहे, ये सुदर्शन चक्र मेरे भक्त के आधीन में, मेरे भक्त के नियंत्रण में। तब दुर्वासा मुनि का, आप अपने भक्तों को तुरंत ठीक करो। तो बोला, तो भगवान ने कहा, मेरे भक्त भी मेरे आधीन नहीं। तो बोला, वो कैसे? तो भगवान ने कहे, अहम भक्त पराधीनो, सुदर्शन चक्र मेरे आधीन नहीं। तो किसके आधीन? भक्तों के आधीन में है। तो कहा कि आप अपने भक्तों को नियंत्रित करो। तो करा कि भक्त मेरे नियंत्रण में नहीं, मैं भक्त के नियंत्रण में हूं। नहीं नहीं, आप स्वतंत्र हो, दुर्वासा मुनि ने कहा। तब भगवान ने कहा, ही अस्वतंत्र एव द्विज, कहा कि नहीं, मैं अस्वतंत्र हूं। अरे अरे, आपने तो कहा, अरे वेद व्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं स्वराट करके, जन्मादि यस यथ स्वराट, आप स्वराट हो। नहीं नहीं, स्वराट तो हूं, पर इस मामले में मैं स्वराट स्वतंत्र नहीं हूं। क्यों नहीं हो? साधु भीर हृदय, साधु भीर ग्रस्त हृदय, साधुओं ने मेरे मुझे हृदय में ग्रस्त कर लिया। वो कैसे? वो कैसे? आप साधु के हृदय में कैसे चले गए? साधुओं के हृदय में आप कैसे चले गए? तो भगवान कहते हैं कि साधु मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैं साधु से भी प्रेम करता हूं, इसके लिए मैं उनके हृदय में चला। साधु ही नहीं, साधु के सेवा करते हैं उनके हृदय, वो भी मुझे प्रिय हो जाते हैं। भक्तेर भक्त जना प्रिया, वो प्रिय हैं, तो इसलिए मैं उनके पास जाता हूं, उनके हृदय में निवास करता हूं। तो दुर्वासा मुनि जो है वो कहते हैं कि साधुओं के पास क्यों जाते हो? तो भगवान कहते, ना हम आत्मा नामा शेष मत भक्ते साधु बिर बिना श्रीयम चात्यंति किम ब्राह्मण ये शाम गतिर अहम परम। ये जो संत है वही मेरा गंतव्य है। ये संत इतने महान होते हैं कि इनके अलावा, इन्हें छोड़कर मैं कोई भी ऐश्वर्य का भोग नहीं कर सकता हूं या करना नहीं चाहता हूं। तो दुर्वासा मुनि पूछे, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि ये साधु जो है मेरे कारण, ये दार आग्रह पुत्र आप्त प्रमाणम वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम यता कतम ताम त्यक्त उत्सहे। वे साधु कौन है? ये साधु ऐसे होते हैं, वैष्णव ऐसे होते हैं, वो मेरे कारण अपने घर, अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने धन को, सभी को छोड़कर मेरा सेवा करने में लग जाते हैं। ऐसे भक्त जो कि सब कुछ छोड़ रहे हैं मेरे कारण, उन्हें मैं कैसे एक बल भी छोड़ूं? ऐसे करके कहते हैं। वे इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि कैसा सेवा करते हैं? तो कहा कि मई निर्बद्ध हृदय साधव समदर्शना वसे कुर्वन्ति मम भक्त्या सत् स्त्रिय सत्पतिम यता। जिस प्रकार से एक सत यानी कि बहुत ही पवित्र स्त्री दंपति जो माता है वो अपने पति का सेवा करती है, उस सेवा के माध्यम से वो अपने पति को पति का हृदय को जीत लेता है। इसी प्रकार से इन भक्तों ने इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया कि मैं उनके वशीभूत हो गया। मत सेवया प्रतितम ते सालोक आदि चष्टुतयम् न्याचेंत सेवया पूर्णा कुतोन्यत् काल विप्लवम्। इतना वो मेरे सेवा में आनंद प्राप्त करते हैं कि उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, उन्हें मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये होते हैं साधु, ये होते हैं साधु। और ये साधु जो है वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। ये मेरे हृदय में निवास करते हैं। साधवो हृदयम महियम, मेरे शुद्ध भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं। क्यों? साधव नाम हृदयम तो हम, साधुओं के हृदय में मैं निवास करता हूं। ये साधु कौन होते हैं? ये साधु वो होते हैं जो जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरे हैं, ये पति मेरे हैं, घर मेरा है, बैंक बैलेंस मेरा है। पर साधु क्या है? वो जानते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है। वे जानते हैं सब कुछ भगवान का है। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, राजसूय यज्ञ में वे कहते हैं, नैवते जित भक्तानां ममाहम् इति माधवा त्वं तवेति चानादि पशुनामेव वैकृतम्। वो कहते हैं कि हे अजित, हे माधव, आपके भक्त जो हैं वो कभी ऐसे नहीं करते हैं मम अहम, वो मम अहम कभी नहीं कहते हैं। जैसे कोई साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, अहम ममेति, मैं और मेरा, ये ऐसे कभी नहीं करते हैं माधव। ये कितना तुच्छ निकृष्ट प्रकार का चेतना है, मम अहम इति माधवा। ये अहम ममेति कितना तुच्छ है, ये इतना तुच्छ है जैसे कि त्वम तबेति, वो कहते हैं वो इसके बदले कहते हैं कि त्वम आपका और सब कुछ आपका है, सब कुछ आपसे आया और सब कुछ आपका है। त्वम तमेति चा नानादि, और ये जो प्रवृत्ति जिसके हृदय में अहम ममेति का, मम अहम का, वो पशु नामेव वैकृति, वो पशु के बांती है। तो साधु वो होते हैं वो कभी मम अहम नहीं करते हैं, अहम ममेति नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं, त्वम तवेति, सब कुछ आपसे आया है और सब कुछ आपका है, ईशावाशम इदम सर्वम। ये है साधु, ऐसे साधु मेरे हृदय में निवास करते हैं। वक्स, ये है भगवान जिनको भक्त वत्सल करके हम लोग संबोधित करते हैं। वत्स, वक्षस्थल और ये वात्सल्य, ये तीन चीज हृदय से इसका संबंध है। वत्स का अर्थ होता है बच्चा, छोटा बच्चा या गाय के बछड़े। गाय के बछड़े को गाय अपने हृदय के निकट रखती है क्योंकि उनके हृदय से एक वात्सल्य निकलता है। इससे और वक्षस्थल के निकट वत्स को रखा जाता है क्योंकि वक्षस्थल से वात्सल्य निकलता है जिससे हम अपने वत्स को निकट रखते हैं। हृदय के निकट हम किसको रखते हैं? जो चीज हमें प्यारा है। जैसे भौतिकवादियों अपने हृदय के निकट क्या रखते हैं? धन रखते हैं। धन को बहिर प्राण कहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं सबका जेब जो है किस किस ओर है, दाएं ओर या बाएं ओर? बाया हर। और उस जेब में क्या रखते हैं? धन रखते हैं क्योंकि धन जो है बहुत प्यारा है। और हृदय कहां पे? बाया हर। तो बताते हैं कि हमारे लिए प्यारा कौन है। पर भगवान कहते हैं साधु हृदय में, साधु के लिए भगवान हृदय में निवास करते हैं। नवरतम दास ठाकुर कहते हैं इसे। तो इसलिए भगवान को भक्त वत्सल करके संबोधित करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस सुंदर बात को एक भक्त के माध्यम से प्रकट कराते हैं। वे जब दक्षिण भारत में परिक्रमा कर रहे थे तब वे चतुर्मास के समय वहां गए तो वेंकट भट्ट श्रीरंग क्षेत्र में वहां उनका संग किए और रोज एक एक वैष्णव के घर में प्रसाद प्राप्त करते थे, क्योंकि रंग क्षेत्र के वैष्णव इतने प्यारे थे कि ये महान सन्यासी महान वैष्णव को आदर से कहते थे, आज आप हमारे घर प्रसाद के लिए जरूर आइए। श्री रंग क्षेत्र बसे यत्र वैष्णव ब्राह्मणा, एक एक दिन सबे कैल निमंत्रण, आइए आज का हमारे घर में स्वागत है, निमंत्रण है। सही क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मणा, देवालय असी करे गीता अवतरना, ऐसे रोज एक एक घर में वो प्रसाद पाते थे। और एक दिन वो एक मंदिर के देवालय के नीचे गए तो देखा कि एक ब्राह्मण वैष्णव जो है वो गीता का पाठ कर रहा था। वैसे तो बहुत लोग पाठ कर रहे, तो कृष्ण चैतन्य उनको क्यों देखे, तो कहते हैं कि के हा फिर के अष्टदश अध्याय आनंद, अष्टदश अध्याय पढ़े आनंद आवेश, शुद्ध पढ़े ना लोक करे उपहास। वो देखे कि ये ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ने में इतना आनंद का अनुभव कर रहा है। अच्छा, और इतना ही नहीं, भगवान ने तो ये देखा और बाकी और भी देखा कि वो जब पढ़ रहे थे तो शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा था, लोग हंस रहे थे, हा 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 करके उपहास कर रहे थे। लोक करे उपहास कहे हंसे, कुछ लोग हंसे, कहे हंसे कहे निंदा तह नहीं माने, लोग हंसे कोई निंदा के पर उन्होंने कुछ माना नहीं। अविष्ट अविष्ट होकर अविष्ट हा ना गीता पढ़े आनंदित मने, इतना आनंद का अनुभव कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु उसके आनंद को देखकर वो भी आनंद भाव विभोर होकर उनके आनंद में का कारण क्या है देखने लगे और देखते ही रह पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने देखा पुलक आश्रु कंप स्वेद यावत पातन, देखी आनंदित है महाप्रभु माना। देखा इतना ही नहीं, जो अनुभव को हम सारे भक्त अनुभव करना चाहते हैं, पुलक यानी कि पुलक कंपित होना, अश्रु आना और कंपन होना, स्वेद ये सब होना, जो पसीना आना जो भाव के द्वारा भक्ति के प्रेम भक्ति के द्वारा होना चाहिए, जो हम सबका लक्ष्य है होना का हम अभिलाषा करते हैं, वो उनके अंदर चैतन्य महाप्रभु देखे और देखते रहे कि इतना आनंद का अनुभव करे और चैतन्य महाप्रभु भी आनंदित हुए। फिर महाप्रभु पूछिला तारे सुन महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हारा एत सुख हाय। अरे भगवत गीता पढ़ रहे हो महाशय, इस भगवत गीता में कौन सी ऐसी बात है जिसे आपको इतना आनंद दे रहा है। विप्र कहे मूर्ख अमी शब्द अर्थ नहीं जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। मैं तो एक मूर्ख हूं, एक अनपढ़ हूं, मुझे संस्कृत नहीं आता है, मेरा संस्कृत बहुत ही निकृष्ट है, मैं एक शब्द भी ठीक से उच्चारण नहीं करता हूं, फिर पढ़ क्यों रहे हो। गुरु का आज्ञा है वो मैं पालन कर रहा हूं, ऐसे महाप्रभु से कहा। तब चैतन्य महाप्रभु कहे कि आपको कौन सा बात अच्छा लगा, तो कहे कि उस सवाल का जवाब देते हैं, अर्जुनेर रते कृष्णा हाय रजुदारा, वसिया चे हते तोत्र श्यामल सुंदर। कृष्ण जो कि श्याम सुंदर है, श्यामल सुंदर, वो एक हाथ में रज्जू और दाएं हाथ में तोत्र यानी कि ये लकड़ी, ये घोड़े को मारने के लिए दो तोत्र है लकड़ी लेकर खड़े हैं, ये देखकर मेरे आंखों में आंसू रहेगा। और किसके लिए वो कर रहे हैं, अर्जुन के लिए कर रहे हैं। अर्जुन रे कहते चेना हित उपदेश, तारे देखी हाया मोरा आनंद आवेश। देखिए कृष्ण जो कि तीनों लोक के स्वामी है, सद ऐश्वर्य से पूर्ण है, वह जो धनवानों के भी धनवान है, सारा संपत्ति उनका है, पर अपने भक्त के लिए वह एक रथ में आरूढ़ होकर उनका आज्ञा का पालन करके रथ के सारथी बन रहे हैं। है कोई ऐसा धनवान जो अपने क्लर्क के लिए या अपने वॉचमैन के लिए कहे कि ठीक है आज आप अपने साइकिल में नहीं मेरे गाड़ी में बैठिए मैं आपका ड्राइविंग करूंगा? है कोई ऐसा? अरे अरे ऐसा धनवान उसका अहंकार जो है चूर चूर हो जाएगा, वो ऐसा निंदनीय अपमान भरे कार्य कभी नहीं करेगा। पर कृष्ण जो कि तीनों लोक के स्वामी है अपने एक शुद्ध भक्त के लिए रथ जो कि एक नगण्य तुच्छ और निकृष्ट कार्य है रथ चलाने के लिए सारथी बने और पार्थ सारथी के नाम से जाने लगे। ये दृश्य क्यों केवल देखकर एक एक श्लोक में गीता का एक एक शब्द में मैं यही दृश्य देख पा रहा हूं। और ये जैसे ही कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे यावत पढ़ा तावत पना तारा दर्शन ए लागी गीता पत ना छाड़े मोरा मन। जब तक मैं गीता पढ़ता हूं तो यही दृश्य दिखाई पड़ता है, आंखों से आंसू हट जाता है। और तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने उनको सीधा भक्ति शास्त्री का डिग्री दे दिया। अगर आपने भी गीता जान लिया तो आप भी जान लिया। उन्होंने कहा प्रभु कहे गीता पते तुम्हारा ही अधिकार तुम्हें से जाना ए गीता र अर्थ सार। आपने गीता का सार को जान लिया कि कृष्ण भक्त वत्सल है और अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यही गीता का सार है। गीता का सार यह है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्त सर्वश्रेष्ठ है और ऐसे भक्त के लिए कृष्ण कुछ भी करने के लिए तैयार है। यह है गीता। ये लीजिए डिग्री। और चैतन्य महाप्रभु सर्टिफिकेट कर लिया, आप गीता का परम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्राप्त कर लिया, मास्टर्स डिग्री डॉक्टरेट डिग्री दे दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहा कि बाकी सब लोग हंस रहे हैं, भले संस्कृत के स्कॉलर हो सकते हैं पर भक्ति का स्कॉलर आप हो। और ऐसे करके संबोधित करते हुए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सारा शास्त्र का सार यह है कि ये जानने के लिए कि कृष्ण सबसे बड़े हैं, पर वैसे बड़े कृष्ण के लिए उनके भक्त उनके नजरों में भक्त उनसे भी बड़े हैं और ऐसे भक्त उनके हृदय में निवास करते हैं और ऐसे भक्त के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे भक्तों के चरणों में कभी अपराध नहीं करना चाहिए। गीता में पहले अध्याय में हम देखते हैं कैसे अर्जुन कहते हैं कि सेना और उभय और मध्य करके आदेश देते हैं। ये सब सुनकर भी बड़े प्रेम से अपने भक्त का सेवा करते हैं। तो यह है सार भागवतम का, भगवद गीता का और चैतन्य चरितामृत का। तो हमें यहाँ से शिक्षा ये लेना चाहिए कि हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रसंग से यही बताया जाता है जा रहा है कि भक्त कितने महान है। योगी त्यागी अपने जगह में ठीक है पर भक्त सबसे महान है, भक्ति सबसे महान है और कृष्ण सबसे महान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। एकाध प्रश्न तो पूछ सकते हैं, वैसे बहुत सरल प्रवचन है तो मुझे नहीं लगता किसी का कोई प्रश्न होगा। बहुत धन्यवाद, आप सब बड़े ध्यान से श्रवण किए, आपके आभारी हूं। श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।